आज का जो टॉपिक है आप सब देख रहे हैं, बी एन ऑप्टिमिस्ट। तो क्या सोचते हैं इस टॉपिक से, क्या हमें सब चाहिए बी एन ऑप्टिमिस्ट? क्या मतलब
ऑप्टिमिस्ट? मतलब आशावादी,
कुछ आशावादी हो, आधा प्रोवर्टिव नहीं क्या?
Whatever you do, you
should be giving your best and positive attitude. Gaurav,
what
do you mean by optimist? It doesn't mean negative. You always think positive. Being an optimist means that you हमेशा आशावादी रहो, हमेशा positive सोचो। जैसे होता है कि एक गिलास है, आधा पानी है उसमें, तो कहते हैं कि ऑप्टिमिस्ट व्यक्ति बोलेगा कि आधा गिलास भरा है, दूसरा नेगेटिव व्यू का व्यक्ति बोले आधा गिलास खाली है। हमें कौन सा होना चाहिए, कौन सा हम लोग प्रेफर करते हैं खाना? तो हम सबको ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए। क्योंकि ऑप्टिमिस्ट का मतलब ये है कि जो हमेशा पॉजिटिव साइड को देखे, जो सोचे कि सब ठीक हो जाएगा, होपिंग अगेंस्ट होप, अगर सब कुछ गलत भी चल रहा है तो होप करें नहीं सब ठीक हो जाएगा, या फिर एक ना एक दिन में सफल जरूर हो जाऊंगा, ये है ना स्लोगन, हम होंगे कामयाब एक दिन, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, मैं हूं आपके साथ, आप होंगे कामयाब एक दिन। हम जरा दो स्टेटमेंट्स हैं जो कि दिखाते हैं कि हम ऑप्टिमिस्ट हैं, और उसमें ध्यान से जरा सोचिए, हम होंगे कामयाब एक दिन, सब ठीक हो जाएगा, हो जाएगा, होंगे, ये सब क्या दिखा रहा है फ्यूचर टेंस कि इसका मतलब क्या है?
अभी हम कामयाब,
अभी ठीक नहीं है, अभी हम समस्या में हैं और कामयाब अभी है नहीं हम, लेकिन हम होप कर रहे हैं कि सब होंगे कामयाब एक दिन और सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? तो सब फ्यूचर की बातें हैं। अब ये बात शुरू होती है कि होंगे कामयाब, तो कामयाबी का मतलब क्या है, सक्सेस का मतलब क्या है, कब हम ये कह सकते हैं कि हाँ आज मैं कामयाब हूं या सब ठीक हो जाएगा, तो कब हम कह सकते हैं हाँ सब ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसी कौन सी स्थिति होती है जब हम कह रहे हैं ना कि हम होंगे कामयाब एक दिन, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करिए, तो ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जब हमें लगेगा हाँ सब ठीक है, कोई समस्या नहीं है और अब मैं बिल्कुल सफल हूं, मैं कह सकता हूं मैं सफल हूं, ऐसी कौन सी स्थिति है?
जब सफल चित हो जाए।
हाँ जी, हाँ राजीव जी, ऐसी कौन सी स्थिति होगी जब हाँ लेकिन हाँ अब कोई समस्या नहीं है, सब ठीक हो गया और हाँ मैं कामयाब हूं, अब कहने की जरूरत नहीं कि होऊंगा, हो चुका हूं, जो प्रेजेंट में हूं आदित्य,
ऐसी स्थिति आई नहीं सकती,
आई नहीं सकती
क्योंकि आदमी को सेटिस्फाइड रहा ही नहीं।
क्यों बड़ी से तो हम हमेशा बोलते रहे कि हम होंगे काम जा रहे, दैट मीन्स वी आर फुली कवर, दैट मीन कि हम अपने आप को बेवकूफ ना दें, क्यों दिन जो गलत हो गया हम होंगे कामयाब एक दिन या सब ठीक हो जाएगा, तो झूठी वजह से
नहीं,
सच्ची कैसे
एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचे जब हम सब कुछ मेरा छोड़ भगवान रहा है, बस थिंकिंग पर डिपेंड करता है।
ऐसे तभी जो आने तक हम कह रहे हैं करें, लेकिन दोनों ठीक है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए हमें, तो हम होंगे कामयाब एक दिन या सब ठीक हो जाएगा, तो फ्यूचर टेंस है और इसका मतलब यह है कि प्रेजेंट में हम परेशान हैं, हम असफल हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हाँ जरूर ठीक हो जाएगा। एक ऐसी स्थिति है जैसे समझ लीजिए आप एक बड़े रेगिस्तान में जा रहे हैं, डेजर्ट में जा रहे हैं और मिराज समझते हैं ना कि आपको लगता है कि आगे पानी है, तो आप भाग के जाते हैं उस पानी के बाद, लेकिन फिर पानी के बस एक कदम और आगे पानी है, तो हमेशा हमें होप बनी रहती है कि शायद वहां पानी मिल जाएगा, फिर हम आगे भाग के जाते हैं, पानी थोड़ा सा और आगे हमसे चला जाता है, तो ये हमेशा ऐसा लगता रहेगा कि हाँ पानी अभी मिल जाएगा मुझे, अभी मिल जाएगा, इसको बोलते हैं मिराज, हम उस ऐसी चीज के पीछे भाग रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, लेकिन हमें आशा है कि नहीं ये पानी हमें मिल जाएगा, वो पानी मिलता नहीं कभी, और जो व्यक्ति है जो पशु है जो उस पानी के पीछे भाग रहा है उसको उसी रेगिस्तान में गर्मी से पीछे भागा के भी मृत्यु हो जाती है। तो देखा जाए कि मटीरियल वर्ल्ड बिल्कुल वैसा ही है जैसे उन्होंने बोला, यहाँ पे ऐसा कभी भी नहीं आपको लगेगा कि हाँ मैं सक्सेसफुल हूँ, समझ आ जाए आज एक स्टूडेंट है आपका ये एम है कि किसी ढंग से मुझे इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन मिल जाएगी, बड़ा कॉम्पिटिशन में तैयारी की, बहुत कोचिंग की, कहीं डोनेशन पड़ी डोनेशन भी दे दिया, सब कुछ करने के बाद अगर आप इंजीनियरिंग करके बाहर भी निकलते हैं इवन दैन यू आर नॉट सेटिस्फाइड क्योंकि आपको जॉब नहीं मिलता, फिर कहीं से कुछ टाइम मोड़ करके आपने जॉब भी ले लिया फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो वहां सर्वाइव करना मुश्किल है, फिर आपने सर्वाइव से कर भी लिया फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं, फिर आप चाहेंगे मेरी एक फैमिली होनी चाहिए, एक सुंदर स्त्री होनी चाहिए। आपको सुंदर स्त्री मिल गई तब भी आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तो उसको मेंटेन करना, फिर बच्चों का पालन पोषण करना वो बड़ा मुश्किल है। तो आप जिस व्यक्ति को देखेंगे उसका 5 साल से स्ट्रगल शुरू होता है और 80 साल तक यही स्ट्रगल चलते रहता है, और इसी स्ट्रगल में करते कभी हाँ मैं अभी हो जाऊंगा, बस मेरी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो जाए फिर मैं कामयाब हूँ, बस मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए फिर मैं कामयाब हूँ, फिर मैं सेटल हूँ, मेरी अच्छी शादी हो जाएगा फिर मैं सेटल हूँ, बच्चे सेटल हो जाए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट नेवर इट नेवर हैपन। वो वैसी स्थिति है जैसे बिल्कुल लगता है रेगिस्तान की पानी बस एक कदम आगे, हमेशा हमेशा ऐसे लग रहा है कि बस सुख एक कदम आगे है और सुख हमें हमेशा आगे भागता रहेगा। तो आप सोचेंगे हमारा नेगेटिव थिंकिंग है। सबल अगर आपने ऐसा कुछ सब्सटेंशियल कर भी लिया, कई लोग हैं जो कि शुरू में बहुत जिसे कहते हैं आर्थिक स्थिति से बहुत उन्नति कर गई, जिनकी शुरू में कोई स्टैंडिंग नहीं है लेकिन बाद में बहुत बड़े इंडस्ट्रीज बन गए, ऐसी हमारी स्टोरीज पढ़ने में आती है, रियल लाइफ स्टोरीज है। सबल से बहुत कुछ लाइफ में गेन कर भी लिया तब भी अब मृत्यु का क्या फायदा, कुछ फायदा है? एक लोग जब मृत्यु आएगी, मृत्यु के समय वो कुछ भी अपने साथ नहीं रहेगा, मृत्यु जब आएगी तो मृत्यु को ये नहीं बोलेगा कि यमदूत को कि वेट करो तुम्हें मालूम है मैं एक PhD हूँ, मैं एक कंपनी का चेयरमैन हूँ, और डेयर यू टच में मेरे आगे किसी लोग होते हैं तुम जैसे खींच के ले आए, तुम नहीं कह सकते बड़े से बड़ा चेयरमैन हो कोई चपरासी हो यमदूत आएंगे उसको खींच के ले जाएंगे, बड़े से बड़ा से धन नहीं कमा रखा हो वो मृत्यु को ये नहीं कह सकते एक मिनट रुक जाओ, हालांकि हो सकता है वो धन कमाने के लिए बोल रहा है कि मरने की भी फुर्सत नहीं है, लेकिन जब मृत्यु आएगी उसको खींच के ले जाएंगे। इसमें ऐसे एक स्टोरी सुनाते हैं हमारे भक्तों कि एक राजा था, उसने खूब फिर अपने आसपास के राज्यों से लड़ाई करके खूब राज्य जीत खूब धन इकट्ठा कर लिया, तो उसकी आध्यात्मिकता में बिल्कुल रुचि नहीं थी, एक साधु के पास गया, तो साधु ने खूब समझाने की कोशिश की वो नहीं समझा, तो साधु ने समझा कुछ करना पड़ेगा, तो साधु ने सोचा कि मुझे आपका ये जन्म प्रति देखने आती है, मैं देख सकता हूँ कि आप आगे किन किन राज्यों पर आपको अटैक करना चाहिए, राजा बहुत कुछ बराबर देखो जन्म प्रति, जैसे जन्म प्रति देख के आया तो साधु बोले राजा बहुत गड़बड़ होगी, तो क्या तो आपकी मृत्यु निश्चित है और तुरंत आने वाली है, राजा बहुत खबरा करते हैं मृत्यु आने वाली है, कहते बिल्कुल तुरंत जो द्वार पे खड़ी है मैं बहुत परेशान हो गया, साधु चला गया अगले दिन फिर हटे राजा एक बहुत अच्छी न्यूज है, बोले क्या, अरे तुम मृत्यु भर तो रहे हो लेकिन सर्वोक में जा रहे हो, सर्वों का नजर बहुत अच्छा होता है यहां से भी अच्छा अच्छा उसमें हुआ चला गया, अगले दिन फिर वापस आने राजा एक बहुत बुरी न्यूज है क्या हो गया, तो स्वर्ग लोग में मच्छर है, स्वर्ग लोग में भी मच्छर है यहां भी मच्छर है हम वो तंग करेंगे, फिर परेशान हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद मैं राजा बहुत अच्छी न्यूज है, बोले क्या स्वर्ग लोग में मच्छरदानी भी है, अरे वेरी गुड स्वर्ग लोग में सब आराम है मच्छर लेकिन मच्छरदानी भी है, एक दिन बाद फिर अरे राजा बहुत बहुत गलत न्यूज है, बोले क्या कहते मच्छरदानी में छेद है, क्या हो गया इसको अब तो परेशान हो गया, फिर आया फिर अरे राजा बहुत अच्छी न्यूज है अब क्या है, मुझे वहां सुई ले जाना और सुई से छेद को छेद देना, पागल हो गए तुम कैसे साधो हो क्या वहां पर कोई मैं चीज ले आ सकता हूँ, राजा आप सुई भी नहीं ले जाओगे कहां ले जाऊंगा सुई कहां ले जा सकता हूँ, कहते फिर सारे राज्य किस काम आते हैं, फिर राजा को समझ आया हाँ कि मैंने अपना पूरा जीवन ही बर्बाद कर दिया सारा धन कमाने में सारे राज्यों को जीतने में, जब मैं जाऊंगा शरीर छोड़ के एक सुई भी अपने साथ में ले जाऊंगा, तो ऐसी कामयाबी ऐसी सफलता किस काम है जब आपके साथ कुछ भी ना मिले, तो जब मृत्यु आती है मृत्यु हमारा सारा धन सारा यश सारी विद्या सबकी सब छीन के ले जाती है, मृत्यु का भी कोई नहीं रोक सकता, आप कहोगे कि गलत बात है ठीक है मृत्यु तो वन से नाइट टाइम आएगी आएगी हम फेस कर लेंगे, लेकिन जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक तो हमें सक्सेस के लिए कोशिश करनी चाहिए, तब तक तो मुझे पूरा हक है कि मैं स्ट्रगल करूं अपने जीवन को सफल बनाऊं, अगर आप ऐसा कर भी गए इस बीच का जो टाइम भी है आपका ये भी कोई कंफर्टेबल टाइम नहीं है, भागवत में बताया गया है ये जो संसार है इसको बोला गया पवर, पवर संस्कृत के 5 शब्दों से बना है प फ ब फ और मा, प का मतलब है
ये 5 शब्द इससे बनता है पवर, तो पा का अर्थ है परिश्रम, अगर आपको कुछ भी करना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हार्ड लेबर,
आजकल बच्चे कोई स्कूल में एडमिशन दिलाना होता है केजी में, तो उसको दो साल की उम्र में ही प्रेपरेटरी स्कूल में भेज देगा। दो साल की उम्र से उसका लेबर मेहनत शुरू किस लिए कि मुझे डीपीएस अच्छे स्कूल में इंटरव्यू क्लियर करना है, उसका एक ही एम होता है। दो साल की उम्र से उसको रटाना शुरू कर दिया जाता है, इंग्लिश में बोलो बेटा, हिंदी में मत बोलो, ये कौन सा कलर, उसे गलती से नीला भी बोल दिया उसको थप्पड़ पड़ा, बोलो ब्लू। इस ढंग से उसका हार्ड लेबर शुरू हो जाता है वो परीक्षा। उसके बाद फिर आदमी सुबह से लेकर रात तक मेहनत करता है किसी ढंग से। मैंने जो अपना एम रखा है अपने घर में, मैंने लक्ष्मी लानी है, अपने जो घर में लक्ष्मी है घर की लक्ष्मी को सेटिस्फाई करना है। आपको मालूम है बॉम्बे में लोग दो दो ढाई ढाई बजे तक काम करते हैं, फिर थोड़ी देर आके रेस्ट करके छह बजे फिर चले जाते हैं। बॉम्बे के बस दो घंटे के लिए सोते हैं बस, इन दो से चार, उसके बाद पूरा दिन लोग भाग रहे हैं। श्री रघुपाल जी ऐसी कथा सुनाते थे कि आदमी सिटी लाइफ में इतना बिजी होता है कि उस व्यक्ति का बच्चा पहचान ही नहीं पाता कि मेरा पिता कौन है। फिर जब वो घर में आता है बच्चा सो रहा है, जब वो घर से निकलता तब भी बच्चा सो रहा है, तो पहचानता ही नहीं कि मेरे पिता कौन है। आदमी इतना परिश्रम करना पड़ता है। जब हम इतना परिश्रम करते हैं तो फास्ट क्या होता है, फेम फोम, आपकी जीवा सूख जाएगी, झाग निकलेगी। जैसे एक गधा जब बहुत काम करता है उसकी झाग निकलनी शुरू हो जाती है, या घोड़े पे बहुत ज्यादा लोड डालू और फिर झाग निकलती है। हम इतनी मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए, दो वक्त की रोटी खाने के लिए, झाग हमारी जीवा सूख जाएगी और फेम फोम निकलेगी। आप बोलोगे मैं सब कुछ करने को तैयार हूं क्योंकि जो मेरा एम है वो मिलना चाहिए। उससे क्या होगा, बंधन। आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी उल्टा सीधा काम कर लेंगे जो कि आपको बांध देगा। एवरी एक्शन एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जैसा आप काम करेंगे वैसे आपको प्रतिक्रिया मिलेगी, और उस क्रिया प्रतिक्रिया से क्या होगा कि आप हमेशा इस भौतिक संसार में पड़े रहेंगे। बंधन, आपका बंधन स्ट्रांग होता रहेगा। फिर क्या होगा, अगर समझिए ये सब तीन करने के बाद भी आपने जो चाहा आपने पा लिया, फिर क्या शुरू हो जाएगा, भय। अब मैंने इतनी मुश्किल से समाज में स्थिति पा ली है, इतनी मुश्किल से मैंने खाने का कर लिया है, कोई इसको लेना है, कोई इसको छीनना है, एक भय अंदर से शुरू हो रहा है, डर। वहां से भय, आप करो मैं भय को भी सहन होगा, लेकिन है तो मेरे पास, लेकिन वो कब तक आएगा। मां से क्या होगा, मृत्यु, सबका सब भर कट जाएगा। तो क्या फायदा बताइए, क्या फायदा ऐसे हमारे सक्सेस हो, क्या फायदा ऐसे हम जिसको कह रहे हैं हम अपनी स्थिति को ठीक कर रहे हैं। इस भौतिक जगत को भगवान ने बताया है दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखों का घर है। जैसे पुस्तकालय होता है पुस्तकों का घर, हिमालय भी हिम का घर, तो भगवान ने ऊपर स्टैंप लगा दुखालय। अब दुखालय में कोई अगर सुख ढूंढेगा तो उसको अब क्या बोलेगा, ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। अगर आपने अपने घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लाया है और कोशिश करें तो उसमें कलर पिक्चर आ जाए, तो व्यक्ति आपको बोलेगा क्यों कलर पिक्चर ढूंढ रहे हैं, बोलो मैं बहुत आशावादी हूं, हम होंगे कामयाब, एक दो एक ना एक दिन जरूर आए, कैसे आएगी, नहीं आ सकते। जब भगवान ने ऊपर स्टैंप लगा दिया कि दुखालय है तो दुख ही दुख है। जो एक भौतिक शरीर हमें मिला है इट इज मेंट फॉर सफरिंग, जो शरीर है ये इसलिए दिया गया कि आप इसमें कष्ट उठाओ। कितनी गलत बात बता रहे हैं, ये सच्चाई है। आपको बॉडी का मतलब मालूम है, एक बार बताया था,
ये है बॉडी, ये है
ब्लड,
और वो से क्या है,
ओल्ड एज,
ओल्ड एज, ये से क्या, बॉडी में जिसमें बर्थ ओल्ड एज डिजीज और यमदूत है उसमें अब क्या खुशी पड़ी।
इस बॉडी का अर्थ ही यही है, बर्थ ओल्ड एज डिजीज एंड डेथ, उसमें हम क्या खुशी पाएंगे। बर्थ आप समझते हैं, बर्थ तो बड़ी अच्छी बात है, बर्थ में क्या दुख है। बर्थ में तो हम बोलते हैं हैप्पी बर्थडे, आपका बच्चा हुआ, हम किसी लोगों को मिठाई बांटते हैं, तो बर्थ में कौन सा दुख हो गया। बर्थ बहुत दुखदाई है, भागवतों ने बताया इसे सब में कि जब व्यक्ति मां के गर्भ में होता है तो उसको समझ लीजिए आपके दो फीट के स्पेस में अगर छह फीट के व्यक्ति को रखा जाए तो कैसा होगा, उसको बिल्कुल तरोड़ मरोड़ करके एकदम पैक करके, जैसे एक धनुष बाण होता है उल्टा, वैसे रखा जाएगा उसको और उल्टा लटका दिया जाएगा, इस पंखे से उसको उल्टा लटका दिया जाएगा एक बोरे में, और बिल्कुल धनुष बाण की तरह ऐसा हो, और फिर ऊपर से लोग उसको तरह तरह से मारे, और उसी बोरे के अंदर मलमूत्र पड़ा हो और तरह तरह के कीड़े हो जो आपको काट रहे हो, कैसा लगेगा आपको? और हमारे स्किन में एक छोटा सा घाव हो जाता है और उसके अगर आपके आपका जो बेस्ट फ्रेंड है ऊपर नमक छिड़कते हैं तो कैसा लगता है? वो जो बच्चे के जो माँ के गर्भ का शिशु होता है उसकी स्किन बहुत टेंडर होती है, सॉफ्ट, और उसके ऊपर एसिड गिरते हैं, जो गर्भवती महिला होती है उसको कहते हैं खट्टा अचार खाना अच्छा लगता है, वो अचार खा रही है लेकिन वो एसिड बन के उसके बच्चे की टेंडर स्किन है, सॉफ्ट स्किन है, उसको काट रहे हैं, बच्चा बेचारा क्या करेंगे? होते बहुत ज्यादा दुखदायी होते हैं माँ के घर पे होते हैं। और जैसे जब वो जो बच्चा घर से बाहर निकलता है तो कैसे आकर देखो रोते हुए चिल्लाता हुआ हंसते हुए कोई नहीं आता, क्यों? क्योंकि अंदर से इतने कष्ट देखे हैं। अगर हमें किसी एक कमरे में बंद कर दिया जाए और खूब पीटा जाए और जैसे ही कमरा खुलेगा तो कैसे भागेंगे बाहर? चिल्लाते हुए रोते हुए बाहर भागेंगे। उसी तरह से बच्चा बाहर आता है क्योंकि उसके अंदर इतने कष्ट देखे हैं तो रोते हुए चिल्लाते हुए बाहर आता है। बर्थ है, ओल्ड एज कहने की आवश्यकता नहीं, कितना दुख है, डिजीज कहने की कोई आवश्यकता नहीं। मेडिकल साइंस कह रही है हम होंगे कामयाब एक दिन, हम एक दिन डेथ को रोक लेंगे, लेकिन ये पोस्ट डेटेड चेक की तरह है, तो वो बात करते हैं इसमें कभी हो नहीं सकता। मैंने कल ही यहां मूलचंद हॉस्पिटल देखा क्रॉसिंग, अब हैरान हो गए कि फ्लाई ओवर में 6 साइन बोर्ड लगे हुए हैं और 6 के 6 साइन बोर्ड कौन से मालूम है? सारे अस्पताल। तो मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि इतने अस्पताल बढ़ गए हैं, इसका मतलब क्या है कि लोग और बीमार पड़ रहे हैं। तो क्या फायदा ऐसी तरक्की का कि हम तरक्की भी किए जा रहे हैं और बीमारी को बढ़ाते जा रहे हैं, और फिर यमदूत जब आएंगे तो अच्छा लगेगा लेके जाए। और कहते हैं जब शरीर से वो आत्मा को खींचते हैं तो इतना दुख होता है, इतना दुख होता है, इतना दर्द होता है, जैसे 40,000 बिच्छू आपको इकट्ठा काट रहे हो, 40,000 बिच्छू, क्योंकि आत्मा चेतना के रूप में पूरे शरीर में विद्यमान है, उसको जब खींचते हैं बाहर बहुत दुख होता है, हम इमेजिन नहीं कर सकते उसको। तो ये शरीर दुखदाई, इट इज मेंट फॉर सफरिंग, दिस मटीरियल वर्ल्ड इज मेंट फॉर सफरिंग, इसमें हम क्या सुख ढूंढेंगे, क्या कामयाबी ढूंढेंगे? अब आप सोचेंगे तो बहुत गलत बात है, टॉपिक था बी एन ऑप्टिमिस्ट, ये तो बुलाए हैं बी एन पेसिमिस्ट। इसमें एक पीजी वुडहॉस का नाम सुना है आपने, एक इंग्लिश सेटायरिस्ट है पीजी वुडहॉस, उन्होंने बहुत अच्छी डेफिनेशन दिया ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट। उन्होंने बोला पेसिमिस्ट इज अ पर्सन हु थिंक्स, पेसिमिस्ट इज अ पर्सन हु थिंक्स दैट मैरिज इज अ डिजास्टर। समझे कि पेसिमिस्ट निराशावादी वो व्यक्ति है जो कि सोचता है कि जो शादी है वो बर्बादी है, लेकिन ऑप्टिमिस्ट क्यों ना है? ऑप्टिमिस्ट इज अ पर्सन हु नोज दैट मैरिज इज अ डिजास्टर। कि आशावादी व्यक्ति वो है जो कि जानता है कि शादी बर्बादी है। डिफरेंस क्या है? जो निराशावादी वो केवल सोचता है, लेकिन जो आशा वर्ल्ड इज ए मिजरेबल प्लेस, लेकिन जो पेसिमिस्ट होगा वो सोचता ही रहेगा कि इस भौतिक जीवन में दुखी दुख है, सब बेकार है, वो सोचता रहेगा, लेकिन जो ऑप्टिमिस्ट है आशावादी वो जानता है इसको कि नहीं, ये भौतिक संसार दुखमय है। तो जानने के बाद ऐसा कौन सा सुख मिलेगा कि हम जान गए चलो जी ये भौतिक संसार दुखी है, तो क्या करेंगे? क्योंकि ये जो हमारा ज्ञान है ये ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं है। भगवदगीता में जब अर्जुन पहले अध्याय में कृष्ण को मना किया, भगवान कृष्ण को, कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, उन्होंने बहुत से आर्गुमेंट दिए और फिर उन्होंने बोला कि अगर मैं लड़ाई जीत भी गया तभी मुझे प्रसन्नता नहीं होगी। तो उन्होंने पहले अध्याय के 30वें श्लोक में बोला निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, निमित्तानि मीन्स कॉजेस कारण, निमित्तानि च पश्यामि मैं देखता हूं, विपरीतानि केशव मुझे सब कुछ उल्टा ही दिखाई दे रहा है। हे भगवान केशव, इस भौतिक जगत में अगर मैं इस लड़ाई में जीतूं या हारूं मुझे सब कुछ उल्टा दिखाई दे रहा है, कि मेरे लिए हार भी बराबर है जीत भी बराबर है, मैं दोनों ही स्थिति में दुखी रहूंगा। अर्जुन की यह स्थिति हो गई कि ना मैं हारना चाहता हूं ना मैं जीतना चाहता हूं, मेरे लिए दोनों ही स्थिति बेकार है, यानी कि इस भौतिक जगत में जीत भी हार के समान है और हार भी हार के समान है। तो अर्जुन को आप क्या बोलेंगे, पेसिमिस्ट बोलेंगे ऑप्टिमिस्ट बोलेंगे? उसमें कहते लोग इस अर्जुन के स्टेटमेंट को ऑप्टिमिस्ट स्टेटमेंट बोलेंगे पेसिमिस्ट स्टेटमेंट?
ऑप्टिमिस्ट
ऑप्टिमिस्ट और इस समय आदमी स्टेटमेंट पैसिमिस्ट है क्योंकि वो सोच रहे, वो बिना ज्ञान के नहीं बोला, पूर्ण ज्ञान से नहीं बोला। लेकिन यही बात जब भगवान आगे गीता के आठवें अध्याय में बताते हैं कि दुखालयम अशाश्वतम, तो भगवान ने बात वही नहीं छोड़ दी, भगवान ने उसके बाद उनको एक ऑप्शन दिया कि पर तस्मात तो भाव अन्य व्यक्त व्यक्त सनातना या तो सर्वेश्व भूतेश्व विनश्यसि न विनश्यति, कि इसके अलावा इस भौतिक संसार के अलावा भी एक और संसार है, एक और जगत है जो कि अव्यक्त है, जो कि अव्यक्त और व्यक्त भौतिक संसार से बहुत परे है और जहां पे कभी किसी चीज का नाश नहीं होता। अगर हम केवल यही बोलते रहे कि ये संसार दुखमय है, दुखमय है, दुखमय है, सब कुछ बेकार है और कोई पॉजिटिव अल्टरनेटिव ना दे तो एक पैसिमिस्टिक थिंकिंग है। भगवान ये नहीं कह रहे कि दुखालय में शाश्वत हम, इसका मतलब क्या हम यहां सत्य रहे दुख में पड़े, नहीं। लेकिन कृष्ण गिवन एन अल्टरनेटिव कि भरत तस्मात तू, किंतु इसके अलावा एक और प्रकृति है जो कि इस जगत के व्यक्त और व्यक्त जो दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा उससे परे है और जहां पे किसी चीज का नाश नहीं होता, हर चीज का नाश हो जाएगा लेकिन उसका नाश नहीं होगा। तो हमें हमारा एक बोध होना चाहिए, हमारा एक बोध क्यों होना चाहिए, क्यों होना चाहिए वो तो हम भगवदगीता के हिसाब से चलेंगे। अर्जुन के पहले अध्याय में अपने निराशा वाले देख रहे कि मैं बिल्कुल निराश हूं, चाहे मुझे जीत मिले या हार मिले मैं इस जगत में नहीं, मैं भीख मांगूंगा। तो इस अर्जुन की इस स्टेट ऑफ माइंड को बोलेंगे पेसिमिस्टिक स्टेट ऑफ माइंड या हिप्पी स्टेट ऑफ माइंड। जैसे हिप्पीज होते हैं कि सब कुछ छोड़ के, घर बार छोड़ के, अर्जुन कहता है मैं जंगल में चला गया, तो अर्जुन एक समझिए हिप्पियों की तरह सोचा था। फिर भगवान ने उसको कैसे ठीक किया, भगवान ने सबसे पहले उसको बताया कि हे अर्जुन तुम जो सोच रहे हो कि मैं ये शरीर हूं, तुम्हें शरीर ही, तुम्हें एक आत्मा हो, तुम्हारी जो असली पहचान एक आत्मा के रूप में है, शरीर के रूप में नहीं है। और आत्मा क्या है, ममई मनुष्य जीव लोके जीव भूत सनातन, कि आत्मा मेरा सनातन अंश है, और सनातन अंश है तो फिर मैं इस भौतिक जगत में क्या कर रहा हूं, मैं इस भौतिक जगत में किस लिए आया हूं, बता सकते हैं कि हम सब आत्माएं इस भौतिक जगत में क्यों आए हैं। गौरव हो क्योंकि हम भगवान से अलग होकर आनंद उठाना चाहते हैं, भगवान के साथ हम ऊपर आध्यात्मिक जगत में आनंद ले रहे हैं क्योंकि हमारा ये नेचुरल पोजीशन है, कृष्णा का और जीव का ये नेचुरल पोजीशन है कि आनंद का आदान प्रदान हो रहा है। लेकिन जब जीव इच्छा करता है कि मैं भगवान से अलग होकर एंजॉय करूंगा तो हमारे लिए भगवान इस भौतिक संसार की सृष्टि करते हैं, इस भौतिक संसार को बना देते हैं। तो ये भौतिक संसार एक जेल खाने के समान होते हैं, जैसे जेल खाने में क्रिमिनल्स को डाल दिया जाता है, अपराधी व्यक्ति को डाल दिया जाता है, ऐसे व्यक्ति को डाल दिया जाता है जो सरकार के नियम को तोड़ता है। इसी ढंग से अगर हमने आध्यात्मिक जगत के नियम को तोड़ा तो कृष्ण सु भगवान स्वयं, केवल कृष्ण भगवान है, एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भ्रत्य, केवल कृष्ण ही है जो सुप्रीम इंजॉयर है, बाकी सब कृष्ण के द्वारा इंजॉयड होते हैं, केवल कृष्ण ही सुप्रीम इंजॉयर है, परम आनंद पा सकते हैं। तो हम जब तक कृष्ण से कनेक्टेड रहे हैं तब तक हमारे जीवन में कुछ अर्थ है, हमारा जीवन मीनिंगफुल है। जैसे हम कृष्ण से विमुख हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, वी बिकम टोटली यूजलेस, बिल्कुल बेकार, जैसे एक बड़ी मशीन में से एक छोटे स्क्रू को निकाल दिया जाए, फ्लोर पे फेंक दिया जाए, तो उस छोटे स्क्रू का पेज का कोई भी अर्थ नहीं, लेकिन दोबारा से उस पेज को उठा के बड़ी मशीन में लगा दिया जाए तो उस स्क्रू की पेज की कुछ वैल्यू होती है। उसी ढंग से जैसे हम कृष्ण से विमुख हो गए, अलग हो गए, वी हैव बिकम टोटली यूजलेस, और यूजलेस होकर हम यहां आ गए भौतिक जगत में, हम भौतिक जगत है एक जेल के समान। अब जेल में अगर कोई आदमी आशा करता है तो बुद्धिमान व्यक्ति किस चीज की आशा करेगा, जेल से निकलने की आशा करेगा। लेकिन अगर जेल से निकलने की बजाय कोई व्यक्ति ये आशा करने लगे कि यहां मुझे चपाती सूखी मिल रही है, इसमें थोड़ा सा घी लगे तो कितना आनंद आएगा, कि दाल रोज एक ही दाल मिल रही है, इसके साथ एक दूसरी सब्जी मिल जाए तो कितना आनंद आएगा, ये जो कंबल है फटा होगा, एक अच्छा सा कंबल मिल जाए कितना आनंद आएगा। तो ये हम सब जो भौतिक जगत में इस समय भाग रहे हैं कि अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी पत्नी, अच्छी लड़की से शादी हो जाए, अच्छा घर मिल जाए, नई गाड़ी ले लूं, ये सब किसके समान है, ये उसी के समान है। एक कैदी जैसे ये सोच रहा है कि यार भला उसकी जो वो है کرتا میرے کرتے سے سفید کیسا ہے, اس کی ڈریس میرے گھر سے سفید کیسا ہے, ایسا ہم ارشا کر رہے ہیں اسے. تو جیلی جو ڈریس ہے یہ جو شریر ہے یہ ڈریس ہے, کیونکہ آدھاتمک جگہ سے ہمیں یہاں پھینک دیا گیا. جیسے ہم پھینکتے ہیں جیل میں اندر آئے تو جیل سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں کہ ڈریس ڈالی جاتی ہے, اور پھر نمبر لکھ دیا جاتا ہے. اسی ڈھنگ سے جیسے ہم بودھ جگت میں آئے ہمیں ہمارے پر ایک کپڑا ڈال دیا یہ شریر, اور ہم ایک شریر دوسرے شریر کو دیکھ کے یا تو آکرشت ہو رہے ہیں یا اسے ایرشا کر رہے ہیں, اس کا شریر اتنا اچھا میرا شریر اتنا گندا, اس کے بعد یہ گاڑی اس کے شریر کو اتنا آ رہا میرے شریر کو کم آ رہا, پورا جیون ہم اسی کیلکولیشن میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ بےوقوفی بھی کیا ہے, سمجھداری ہے, اور اسی کو ہم بولتے ہیں ہم ہوں گے کامیاب ایک دن, کہ جب میرے شریر کو اور آرام ملے گا تو میں کامیاب ہو جاؤں. تو یہ کوئی سمجھداری کی بات ہے, تو ایسی آشا رکھنا تو اچھی آشا ہے. دو طرح کے ایمز ہوتے ہیں, آبجیکٹو ہوتے ہیں ہمارے, ایک ہوتا ہے شریس, ایک ہوتا ہے پریئس. پریئس ہوتا ہے جو امیجیٹ جو ہمیں اچھا لگے وہ کریں گے. جیسے ایک بچہ ہے وہ کبھی اسکول جانا نہیں چاہے, وہ کھیلتا جانا چاہے, لیکن اس کے ماں باپ اس کو زبردستی اسکول میں بھیجتے ہیں تاکہ اسکول میں پڑھے گا آگے کچھ بن پائے. تو جو ویکتی دور کی سوچتا ہے لمبا آگے کی سوچتا ہے اور ایک آبجیکٹو لے کے چلتا ہے وہ کہتے ہیں شریس, جس میں ہمیں الٹیمیٹلی بینیفٹ ملتا ہے لانگ ٹرم. اور ایک جو شارٹ ٹرم میں ہوتا ہے کہ ترنت مجھے خوشی مل جائے, ترنت مجھے آنند مل جائے, اس کو بولتے ہیں پریئس. تو جو بدھیمان ویکتی ہے وہ شریس کی طرف جائے, اور جو کم بدھیمان ویکتی ہے وہ پریئس کی طرف جائے. تو ہم لوگ کے یہاں جو اکثر جو کم بدھیمان ویکتی ہیں وہ سنسار کی چکا چون سے آکرشن ہو جاتے ہیں, سندر استری طرف ایسے دیکھتے ہیں. جیسے روز کتنی ہی استریوں کو ہم نے دیکھ لیا پھر بھی آنکھیں سیٹسفائڈ نہیں ہوتی. کوئی بھی سندر وستو ہے کھانے کو اس کو دیکھتے ہیں کہ پارلر اس کو کھایا جائے, سندر میوزک کو اس کو سننا چاہتے ہیں, ابھی تک ہم سیٹسفائڈ نہیں ہوئے. یہ ہو گیا پریئر, اسی چیل کے اندر ہم ڈھونڈ رہے ہیں کچھ فیسلٹی مل جائے. تو بدھیمان جو ویکتی ہے وہ جیل سے باہر نکلنا چاہے گا. اب کون بتائے گا کہ یہ جیل ہے اور جیل سے باہر نکل رہا ہے؟ اس میں ایک اسٹوری کے دوارا سمجھ سکتے ہیں. ایک بار ایک امیر ویکتی کی پتنی کا 9 لاکھ کا ہیرے کا ہار تھا, کھو گیا. تو اس پتنی کو وہ بہت ایسا نہیں تھا کہ وہ ویکتی دوبارہ سے ہار نہیں خرید سکتا تھا, وہ خرید سکتا تھا, لیکن اس پتنی کو ہار بہت پیے تھا, ایک ریئر چیز تھی. تو پورے پیپر میں اس نے ایڈورٹائزمنٹ کرا دیا کہ جو بھی ویکتی اس ہار کو لائے گا میں اس کو 9 لاکھ روپے دے دوں, لیکن یہ ہار چاہیے. سب نیوز پیپر میں یہ ایڈورٹائزمنٹ آ گیا. اب ایک ویکتی تھا, اس نے پیپر کو دیکھا, اور جیسے پیپر کو دیکھا اس نے پیپر نیچے کیا تو سامنے دیکھا, اس نے سامنے دیکھتے وہی ہار اس کو دکھائی دے رہے. اس نے دوبارہ سے دیکھا نیوز پیپر کو, پھر سے دیکھا وہی ہار, ترنت کود پڑا. جیسے کود پڑا ایک نالی سے تھی, کود پڑا باہر آیا تو ہار نہیں ہے اس کے ہار کی, پورا کیچڑ سے بھر گیا. پھر اس نے دیکھا پیپر میں, پھر دیکھا سامنے نالی میں, ارے ہار تو وہی ہے. پھر سے کودا وہ, اور پھر وہ کھانا ایک دم کیچڑ سے بھر گیا باہر آ گیا. بار بار وہ اس نالی میں کود رہے ہار کی تلاش کرتے ہیں باہر آ رہا, وہ پریشان ہو گیا. ابھی وہاں سے ایک ساتھو گزر رہے تھے, ساتھو نے پوچھا ہے بھدر پروش تمہیں کیا کر رہے ہو؟ اس نے بولا 9 لاکھ کا مانگ رہا ہوں. بولا تمہیں کیا مطلب؟ آپ جائیے آپ کو سالوں میں آپ کیا کن بات میں بات چیت چلیے. ٹھیک ہے آگے چلیں. لیکن اس ویکتی کی جو وہ تھی کہ 9 لاکھ روپے ہیں اور سامنے ہار پڑے, کیوں نہیں آ رہا میرے ہاتھ؟ پھر سے وہ کودا, پھر کیے جا رہا ہے, وہ بار بار کود رہا ہے لیکن اس کو ہاتھ میں ہار نہیں آ رہا. سادھو جو تھا وہ سمجھتا تھا کچھ گڑبڑ ہے, کوئی سادھو بہت کرونا کمپیشنٹ ہوتا. تو اسے پھر سے کچن مڑ کے دیکھا کہ ویکتی وہی اس کی کریا چل رہی ہے, بار بار وہ کیچڑ میں کود رہا ہے, پورا اوپر سے سل سے لے کے پاؤں کے کیچڑ سے بھر گیا, لیکن بار بار وہ کھول ہی جا رہا ہے. پھر سے سادھو واپس آیا, اس کو بہت اس پہ دیا آ گیا, کتنے کر کے بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ تب تک وہ ویکتی بالکل تھک چکا تھا, ہار چکا تھا. پیپر اسے بولا بھی نہیں جا رہا, پیپر دیکھوں گا ہاں نیچے دیکھوں گا, کہاں ہے ہار؟ سب بھائی ہار چاہیے تمہیں؟ ہاں کہاں ہے؟ سب بھائی اوپر دیکھو, دیکھا کہ اسے اوپر پیڑ میں وہ ہار لٹکا ہوا تھا, اور اس کی جو ریفلیکشن تھی پانی کی وہ نالی میں پڑا. اسی ڈھنگ سے ہم سب کی استھتی ہے, یہ جو بھوتک جگت ہے یہ اسپرچل ورلڈ کا ریفلیکشن ہے, ایک چھایا ہے, اور ہم اسی چھایا کے پیچھے بار بار بھاگ رہے ہیں. ہاتھ دکھا یہاں خوشی مل گیا, آنند شاید مل جائے, ہم کیچڑ میں بار بار پڑ رہے ہیں. اور ہم کو ہمیں سازو کچھ بتاتا بھی ہے کہ ایسا مت کرو, تم بولے جاؤ میں نہیں مانوں, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہمیں بزی ہے, دیکھ رہے ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن جب وہ بالکل تھک جاتا ہے جیسے بالکل تھک گیا ہار گیا اور بھی آگے کے نظر نہیں آ رہا تب وہ سادھو کے پاس آتے ہیں بتاؤ کیا کرو تو سادھو کو تو سچائی دکھاتا ہے دیکھو تمہیں اصلی دھن چاہیے اصلی آنند چاہیے تو اوپر سرچوں بڑی ہے آدھیاتمک جیون ہے کیونکہ وہی ہماری اصلی پہچان ہے وہی ہماری اصلی پہچان ہے ادر وائز ہم اسی بھوتی جگہ پہ بار بار ایک چھایا کے پرتی کودتے رہیں گے بھاگتے رہیں گے اور ہمیشہ انسیٹسفائڈ رہیں گے ہمیشہ فرسٹریٹڈ رہیں گے تو ایسی آشا کا کیا فائدہ ہمیں اس طرح سے آشا کرنی چاہیے جس سے میں اپنی نیچرل پوزیشن میں جا سکوں میری نیچرل پوزیشن کیا ہے نیچرل پوزیشن آدھیاتمک جگہ میں میرا اصلی سوروپ کیا ہے جیوے سوروپ ہوئے کرشن نتیہ داس جی جو ہم سب آتمائے ہیں وہ بھگوان کے نتیہ داس ہیں ہمیشہ اس کے سروینٹ رہے ہمیشہ اب پرشن یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے نتیہ داس تو رہیں گے تو وہاں پہ پہنچا کیسے جائے ڈیلی ایکٹیویٹیز میں کیا کیا جائے اور کیا مجھے امید ہے کیا ایسا پروف ہے کہ ایسا کرنے سے اپنے نیچرل پوزیشن میں آنے سے مجھے اصلی آنند پراپت ہوگا تبھی تو میں آشا کر سکتا ہوں اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جن جن ویکتوں نے بھگوان کی شرن لی ہے جن جن ویکتوں نے آدھیاتمک جیون کو اپنایا ہے ان کے جیون میں ہمیشہ آنند رہا ہے بھگوان گیتا میں سب سے پہلا بھگوان ارجن کا ہے ارجن جب پہلے ادھیائے تک بالکل شوق سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ وہ اپنے دھنش کو بھی نہیں اٹھا پا رہا تھا اس کی ساری پوچھیں جل رہی تھی وہ کہہ رہا تھا کہ میں سب کچھ چھوڑ کے من میں چلا جاؤں گا بھکشا مانگ لوں گا لیکن جیسے اس نے بھگوان سے گیتا کا اپدیش سنا بھگوان سے یہ گیان پایا کہ میں شریر میں آتما ہوں اور کس طرح سے مجھے کاریہ کرنا چاہیے اس نے 18 ادھیائے میں کیا بولا نشو بہت سمتی لگتا تب پرسادا میں اچھے تھے چتوسنی رت سندے کنشیے وچنم تھا کہ اب میرا سارا موہ نشٹ ہو گیا ہے نشٹ بہت سمتی لگتا اب مجھے گیان پراپت ہو گیا تھوڑی سی سمتی کہ ناؤ دیٹ آئی ایم یور سروینٹ آئی شوڈ ڈو وٹ ایور یو وانٹ نشٹ بہت سمتی لگتا چتوس میں اب میں اپنے بھوش میں سچویٹڈ ہو گیا ہوں ویری سچویٹڈ ہوں رت سندے ہے جتنے ڈاؤٹس ہیں سب کے سب ختم ہو گئے ہیں کنشیے وچنم تھا اب تم جو کہو گے میں کروں گا لیکن ہمارے ساتھ کیا پرابلم ہے خاص کر انڈیا میں کہ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہاں ہمیں بھگوان پہ وشواس نہیں ہے اور پورا وشواس بھی نہیں ہے ابھی بھی ہمارے من میں ڈاؤٹ رہتا ہے کیا بھگوت گیتا واقعی میں ہوا ہے ایسا یہ کہانی ہے واقعی میں بھگوان کرشن ہے یا سب پھر کلپنا ہے آپ پلیز پہنچ رہی ہو اور ایسا بتائیے کہ آپ کے من سے وچار ہے کہیں کونے میں کہیں نہیں ہے سب کے ساتھ سدھڑ جس میرے میں تو ہے میں خود کہتا ہوں کیونکہ جس کے من میں یہ سدھڑ وشواس آ گیا کہ واقعی میں کرشن ہے کرشن ایک پروش ہے جو بھی دیکھ سکتے ہیں بول سکتے ہیں ہماری اچھاؤں کو سمجھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ پریم کر سکتے ہیں ہمارے بدھو بن سکتے ہیں ہم ان کے ماتا پتا بن سکتے ہیں ہم ان کے پریمی بن سکتے ہیں ہم ان کے سیوک بن سکتے ہیں اگر ایسا ایک بڑی وشواس آ جائے تو ہمارا جو چال چلن ہوگا اور ہماری جو کریائیں ہوں گی بالکل الگ ہوں گی ہم اپنے لیے ایک شرم بھی نہیں جیئیں گے ہم ایک ایک شرم ہمارا کرشن کے لیے ہوگا تو کیا ایسی ہماری استھتی ہے وی ہیو ٹو بی فیئر بھی نہیں چل رہا وی ہیو ٹو بی آنےسٹ بھی ایسا نہیں کیونکہ ہمارے ہدے میں کہیں ایک سندیہ ہے جب تک وہ سندیہ جائے گا نہیں جب تک وہ وشواس دھڑ نہیں ہوگا ہماری استھتی چلتی رہے گی تو ہمیں کیا کرنا ہے اس وشواس کو دھڑ کرنا ہے ایسا دھڑ کرنا ہے کہ چیتانیہ چیتن نے بولا گیا کہ شردا شبد وشواس کہہ دے سدھڑ نشچے شردا شبد کا مطلب کیا ہے کہ سدھڑ نشچے کیسا نشچے کرشن بھکتی کہہ لے سرو کرموں کے کھڑے کہ اگر میں کرشن بھکتی کر لوں تو سارے کے سارے کاریہ ہو جائیں گے مجھے اور کسی کاریہ کی آوشیکتا نہیں ہے کیول کرشن بھکتی بس یہ جو منشیہ شریر ملا کیول اسی لیے ملا کیونکہ اسی منشیہ شریر میں ایک سادھو کے پاس جا سکتا ہوں میں اس کو اپنی سمسیا بتا سکتا ہوں میں اس کو بتا سکتا ہوں کہ میرے پاس سب کچھ ہے دھن ہے استری ہے مان ہے پرتشٹھا ہے پھر بھی میں سکھی کیوں نہیں ہوں وائی آر آئی سفرنگ میرے ساتھ کیا سمسیا ہے ایک سادھو پھر آپ کو بتائے گا کہ آپ کے جیون میں آدھیاتمکتا کی کمی ہے جب تک اپنے جیون میں ہم اپنے کو کرشن نہیں لائیں گے ہم جیون بھر اسی جیون میں نہیں کئی جیون بھر میں اس مرتیو سنسار کے چکر میں پڑتے رہیں گے اور ہمیشہ دکھی رہیں گے विश्वास को सुदृढ़ करना है, पक्का करना है, तब जाके हम जान सकते असली आध्यात्मिक जीवन क्या है। लेकिन भगवान बहुत कृपालु है, अगर हमें अभी ये स्थिति नहीं भी है कि विश्वास पूरा है, अगर हमने शुरुआत भी कर ली है तो आप ये महसूस करेंगे कि आपके अंदर कितना परिवर्तन आ रहा है। अगर हमने आध्यात्मिक जीवन का शुरुआत भी कर दिया है, आरंभ भी कर दिया है, तो इट स्टार्ट गिविंग अस हैप्पीनेस, श्री प्रभुपाद जी का हैप्पीनेस। जैसे हमने आध्यात्मिक जीवन में ज्ञान प्राप्त करने की शुरुआत की, तब से हमें आनंद प्राप्त होना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं कि जब तक हम परफेक्ट नहीं पहुंचेंगे हमें आनंद नहीं आएगा, हमें थोड़ा सा भी शुरुआत किया हमें आनंद की प्राप्ति आरंभ हो जाएगी। ये है आध्यात्मिक जीवन में, तो हमें जो आशा करनी है आध्यात्मिक जीवन में आशा करनी है, क्योंकि तो हमें जानना चाहिए कि मेरा असली रूप क्या है, मैं एक शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, और आत्मा होने का मेरा एक संबंध है कृष्ण से, और कृष्ण एक पुरुष है, परम पुरुष एक भगवान है, जो कि भगवान गीता में कहते हैं कि पत्र पुष्पम फलम स्वयं जो मैं भक्त प्रेक्षति, फूल पत्ता पानी जो भी मुझे भक्ति और प्रेम से देता है मैं उसको ग्रहण करता हूं, भगवान उसको पाते हैं, उसको खाते हैं, तो हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए। अगर भगवान खाते से मतलब एक पुरुष है, उनके अंदर भी भाव है, तो हमारे भावों को समझते हैं, भगवान हम सबके हृदय में बैठे हैं परमात्मा के रूप में, हमारी एक एक इच्छा को नोट करें। अगर हमें अपनी जो भी आशा है, जो भी हमें कुछ इच्छाएं हैं, जो हम अपने सबसे प्रिय मित्र से मांगते हैं, अगर हम दुखी भी हैं तो हमें अपने प्रिय मित्र के पास जाना चाहिए, सबसे प्रिय मित्र हमारे भगवान है। अगर हमें जीवन में सुरक्षा भी चाहिए तो हमें भगवान की शरण लेना चाहिए, सुरक्षा के लिए हमें LIC के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। LIC की जो पॉलिसीज है, जीवन आशा, जीवन तारा, भविष्य यदि हो आपके हाथ तो सुख समृद्धि आपके साथ। आप बताइए LIC पॉलिसी में आप कब आनंद उठाएंगे? कभी भी नहीं उठा पाएंगे, जब तक आप जीवित हैं आपके ऊपर प्रीमियम का बोझ पड़ा रहेगा, और आपके मरने के बाद वो दूसरे व्यक्ति आनंद उठाएंगे, तो ऐसी सुरक्षा क्या होगी? और भगवान गीता में कहते हैं कि अनिश्चिंत नाम ये जना परिपा सकते तेषाम नित्य भुक्ता नाम योगक्षेम वहां, कि जो अनन्य भक्ति से मेरा चिंतन करता है मैं उसके पास जो नहीं है वो प्रोवाइड करता हूं, वो देता हूं, और जो है उसकी रक्षा करता हूं। तो हमें कुछ भी चाहिए हमें कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। भागवतम के तीसरे स्कंध में एक श्लोक आता है, भगवान कार्तिक मुनि को बता रहे हैं कि जो भी व्यक्ति मेरी भक्ति करता है, मेरी शरण में आता है, वो उसको कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं होता, हु इज नेवर फ्रस्ट्रेटेड। ये कितनी बड़ी बात है, हम सब फ्रस्ट्रेशन दूर करना चाहते हैं, तो भगवान सीधा एक उपाय बताए कि मेरी शरण में आता है। भगवान कहते हैं जो भी आप मेरी भक्ति करता है, मेरी शरण में आता है, ही इज नेवर फ्रस्ट्रेटेड। तभी आप देखेंगे जो भक्त लोग हैं हमेशा आनंद में रहते, हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि जो रसराज श्री कृष्ण है उससे हमारा कनेक्शन है, हमें मालूम चल गया कि हमारे असली पिता कौन है, और मेरी हर इच्छाओं को, हर समस्याओं को समाधान वो कर सकते हैं, वो मुझे सुख शांति और सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, तो फिर मुझे किस चीज की किस चीज का एंग्जाइटी, किस चीज की चिंता है, बताइए। ये है असली आशा, ये है असली ऑप्टिमिज्म, और इसमें हमारे पास बहुत से उदाहरण हैं, क्योंकि जब हम शुरू करते हैं भक्ति तो भक्ति करना एक समझ लीजिए कि बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति भक्ति करते हैं। अक्सर ये कंसेप्शन है कि भक्ति तो सेंटिमेंटल लोगों के लिए, मूर्ख लोगों के लिए, हारे हुए थके हुए व्यक्तियों के लिए, ये सामान्य परसेप्शन है कि जो व्यक्ति थक गया है, हार गया, पेसिमिस्ट है, हर जगह से ठोकर खा चुका है, भिलाकूट है, वो भक्ति में आता है, ऐसा नहीं। कई लोग जो बहुत साइंटिस्ट हैं, बड़ी तरक्की कर रहे हैं मेडिकल पोजिशन में, उनको कुछ मतलब डोंट वेस्ट माई टाइम, मेरे पास और बहुत सी चीजें करने को, तो उनका मान जो ज्ञान है वो माया ने हार लिया। लेकिन भगवान जो व्यवस्था बताते हैं भागवत में श्लोक है कि भक्ति योग इज नॉट फॉर द फूल्स, भक्ति योग इज फॉर द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। अकामो सर्व कामो मोक्ष कामा उदाहरण दिए कि मेन भक्ति योग है ना जजेर पुरुषम कर, चाहे आप किसी बिना किसी इच्छा के अगर आए भगवान की शरण अकामो, या बहुत ही इच्छाओं के साथ आए हैं, हो सकता है आप भगवान की शरण इसलिए आए हैं कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए, हो सकता है भगवान की शरण इसलिए आए हैं कि मेरी बीमारी दूर हो जाए, हो सकता है भगवान की शरण इसलिए आए हैं कि सुंदर स्त्री से मेरा विवाह हो जाए, हो सकता है भगवान की शरण इसलिए आए हो कि मेरा बिजनेस चल पड़े। सर्व काम तरह तरह की इच्छाओं से भी आप आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम और सर्व काम या मोक्ष काम या हो सकता है कि आप केवल मोक्ष की कामना से भगवान की इच्छा में भगवान की शरण में तो सबके सब व्यक्ति कौन है उदार भी देर आर मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन वाई देर इंटेलिजेंट पर्सन बिकॉज तीव्र भक्ति योगे उन्होंने समझ लिया है तीव्रता से भक्ति करनी चाहिए चिंता में से मीन्स अर्जेंसी से इस समय बहुत कम है तीव्रता से भक्ति करनी है कि मनुष्य शरीर बहुत मुश्किल से मिलता है और मनुष्य शरीर में आयु बहुत कम है तीव्र भक्ति योगे ने एक्सप्रेस डोंट वेस्ट योर टाइम तीव्र भक्ति योगे ने यजेत पुरुषम फलम चाहे आप किसी भी इच्छा से आए हैं बिना इच्छा के आए हैं मोक्ष की इच्छा से आए हैं अगर आप कृष्ण की शरण में आ रहे हैं तो यू आर मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन कृष्ण की शरण का भी क्या करना है तीव्र भक्ति योगे यजेत पुरुषम फलम बड़ी तीव्रता से भी भक्ति को करना है जब भक्ति की शुरुआत करते हैं इसमें आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है जब नियमों का पालन करना होता है तो हमें थोड़ी सी तकलीफ होती है क्योंकि हमें कई कई जन्मों से आदत पड़ी हुई है नियम तोड़ने के अपनी इन व्यक्ति करने के जब आपको कुछ साधु पुरुष नियम बताते हैं तो थोड़ी सी आपको तकलीफ होती है क्योंकि उस तकलीफ को सहना क्योंकि मनुष्य शरीर मिला ही तपस्या पे गया मनुष्य शरीर इसलिए नहीं मिला कि हम कुत्ते मिलने की तरह काम करते हैं केवल उन्हें देखते नहीं नाम देव देव भाजन देव थोड़े अष्टांग कामन हम तो बिल्कुल जान दें बिल्कुल जान दें जो सूर जिस तरह से इधर उधर मन कहीं भटकता है इसलिए हमें विशेष नहीं मिला कि हम भी भटकते रहे कि कहाँ है खाना कहाँ है सेक्स कहाँ है सोना नहीं किसलिए मिला फिर तपो दिव्य पुत्र का ये सत्वम शुक्र अस्मा ब्रह्म सुखम को मानता कि ये विशेष नहीं मिला दिव्य तपस्या करने के लिए उस तपस्या से बात क्या होगा आपका शुद्धिकरण होगा आपका प्योरिफिकेशन होगा उससे क्या होगा ब्रह्म सुखम तो अनंतम फिर तुम्हें ब्रह्म सुख मिलेगा कैसा अनंतम अनलिमिटेड जो कभी समाप्त नहीं होगा तो मनुष्य शरीर का पर्पज ही केवल यही है कि आप दिव्य तपस्या करें दिव्य तपस्या करके अपना शुद्धिकरण करें और फिर आप ब्रह्म सुख की प्राप्ति करें ऐसा सुख जो अनंत हो तो हमें जब हम भक्ति प्रारंभ करते हैं तो भक्ति प्रारंभ करते हैं तो कहीं कई बार हमें कष्ट महसूस होते हैं कुछ तपस्या करनी पड़ती है हमें थोड़ा ऑप्टिमिस्ट रहना है तब हमें बड़ा होपफुल रहना है कि मैं दिव्य तपस्या कर रहा हूं इससे मुझे क्या होगा ब्रह्म सुख की प्राप्ति होगी इसलिए कथा आती है चैतन्य महाप्रभु आप सब जानते हैं चैतन्य महाप्रभु कौन है चैतन्य महाप्रभु है स्वयं भगवान कृष्ण जो कि कलयुग में आते हैं हमें सिखाने के लिए भक्ति कैसे करनी चाहिए द्वापर युग में कृष्ण आए और उन्होंने गीता का उपदेश दिया उस गीता के उपदेश को प्रैक्टिकली कैसे लगाना है अपने जीवन में उस गीता के उपदेश को प्रैक्टिकली कैसे अपने जीवन में उतारना है ये बताने के लिए चैतन्य महाप्रभु है तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को छुपा के रखा था उन्होंने कभी ये नहीं बताया था कि मैं भगवान हूं वो हमेशा एक भक्त के रूप में रहे तो एक दिन ऐसा हुआ चैतन्य महाप्रभु ने महाप्रकाश का इलाज दिया जब उन्होंने अपने जितने भी भक्त थे जितने भी पार्षद थे उनको अपना असली रूप दिखाया उनको बताया कि मैं भगवान हूं और हर एक भक्त को उनका असली स्वरूप बताया तो उन्हीं के पार्षदों में एक भक्त थे मुकुंद नाम था तो चैतन्य महाप्रभु ने सब भक्तों को बुलाया और उनके बारे में उनको दर्शन दिए अपने असली दर्शन दिए और उनको बताया कि तुम्हारा असली रूप क्या है लेकिन उन्होंने मुकुंद को इग्नोर कर दिया सब भक्तों ने पूछा महाप्रभु मुकुंद बहुत से भक्त हैं आपके उनको आप क्यों इग्नोर कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु ने जान के बोला अरे उस मुकुंद की बात मत करो वो मुकुंद तो एक बेट पहनने का लोटा है कभी वो मायावादियों के पास चला जाता है कभी वो मेरे पास आता है मैं तो उसको लाखों साल तक नहीं देखूंगा तो जब ऐसा सुना मुकुंद बाहर खड़े थे तो मुकुंद ने नाचना शुरू कर दिया सब बहुत हैरान हो गए मुकुंद ने नाच के जो शोर मचाने लगे कि भगवान मुझे लाख साल बाद फिर से दिखाई देंगे भगवान मुझे लाख सालों बाद फिर से दिखाई देंगे चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि मैं उस मुकुंद को लाखों साल तक नहीं देखूंगा तो मुकुंद ने क्या किया कि भगवान मुझे लाख सालों बाद फिर दिखाई देंगे कितनी बड़ी बात है कि भगवान मुझे लाख सालों बाद फिर से दिखाई देंगे यह है ऑप्टिमिज्म यह है आशा कि भगवान मुझे फिर से दर्शन दे जब चैतन्य महाप्रभु ने उनके ये भाव देखे तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गले लगा दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमिज्म यह है आशा कि भगवान अगर मुझे लाख साल बाद दिखाई देंगे तो कितनी बड़ी बात है भगवान स्वयं दर्शन दे रहे क्योंकि हमारी स्थिति है क्या हम तो बड़े तुच्छ हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते हम अपने पेट में जो खाना खाते हैं वो भी नहीं पचा सकते वो ही भगवान को परमात्मा के रूप में अग्नि बन के उस खाने को बचाना पड़ता है हमारी क्या स्थिति है तो ऐसे जीव को जब भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, कितनी बड़ी बात है। चाहे वो लाख साल के बाद हो या करोड़ साल के बाद हो, भगवान ने मुझे इस लाइफ को समझा मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। तो ये समझ के भगवत प्रभु कितने नाच उठे और भगवान बोले ये आशीर्वाद वो है विश्वास। ऐसी बहुत सी कथा है, ये कथा है जड़ भरत जी। जड़ भरत का नाम सुना सकते, एक भरत राजा थे जिनके नाम से ये भारत वर्ष का नाम प्रदर्श करते थे। वो बहुत बड़े भक्त थे, वो अपने राज्य को छोड़ के जंगल में चले गए। इसलिए वो जंगल में गए तो अंत समय में जब आने लगा तो उनको एक हिरण से अटैचमेंट हो गया, और अंत समय में वो जब हिरण का चिंतन करते उन्होंने शरीर छोड़ा, तो फिर उनको अगला शरीर हिरण का मिला। लेकिन हिरण के शरीर में भी उनकी भक्ति चलती रही। फिर उनको तीसरा जन्म मिला एक पुरुष का, जिसमें वो बिल्कुल एक पागल इंसान की तरह रहते थे, बेवकूफ व्यक्ति की तरह बन के रहते थे, किसी से बोलते नहीं थे, कुछ नहीं, चुपचाप रहते थे और भगवान का स्मरण करते रहते थे। उनका शरीर बहुत हृष्ट पुष्ट था। तो एक बार वो वैसे ही एक सड़क पे बैठे थे, हृष्ट पुष्ट नहीं था और भगवान का चिंतन कर रहे थे। तो कुछ डाकू लोग वहां से निकले, डाकू लोग ढूंढ रहे थे ऐसे व्यक्ति को, एक हृष्ट पुष्ट व्यक्ति को, जिसको हम भगवान को बलि चढ़ा सकते, काली माता को बलि चढ़ा सकते। तो वो उसको जड़ भरत को पकड़ के ले गए। उन्होंने जड़ भरत को स्नान करवाया, पूरा उनका स्नान करवा के वो काली माता के सामने ले गए और उनके सिर को ऐसे रख दिया। और जड़ भरत का देखिए विश्वास, उनको मालूम था कि भगवान मेरी हमेशा रक्षा करेंगे। तो उन्होंने कुछ प्रोटेस्ट नहीं किया, कुछ वहां की वो बहुत शक्तिशाली थे, वो चाहते थे डॉक्टर से लड़ाई कर सकते, कुछ प्रोटेस्ट नहीं किया, चुपचाप डॉक्टर के साथ गए। जैसे वो उन्होंने उनको बलि के उसके लाए, वो चुपचाप खड़े रहे, उनको सिर को झुकाया, उनका सिर भी झुका दिया। और जैसे ही वो उनका सर काटने लगे थे, स्वयं काली माता अपना जो मोती थी फोड़ के बाहर आई और उन सब डाकुओं को उन्होंने मारा। क्योंकि जो दुर्गा माता है वो भी वैष्णवी है, भगवान की भक्त है, वो नहीं देख सकते कि मेरे स्वामी के भक्ति ये स्थिति हो। स्वयं दुर्गा माता काली माता इस मूर्ति को फोड़ के बाहर आई और उन्होंने हर जो डाकू उनका वध करने वाले थे उनका वध कर दिया। तो ये है विश्वास। अगर मैं भगवान की शरण में जा रहा हूं तो भगवान मेरा हर स्थिति में रक्षा करेगा। तो हम सबको इस तरह से विश्वास होना चाहिए, और हमें असली आशा रखनी है तो हमें भगवान की शरण में आशा रखनी चाहिए। चाहे कोई भी इच्छा है या इच्छा नहीं भी है, हर स्थिति में हमें भगवान की शरण करना चाहिए। और ये जो हम कर सकते हैं वह मनुष्य शरीर में ही कर सकते हैं, और इस मनुष्य शरीर में हमें इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। इसलिए आप सबसे अनुरोध है, कृपया करके इसको अपनाइए। हम बहुत भाग्यशाली हैं, हम श्रीला प्रभुपाद जी के आंदोलन से जुड़े हैं। जिस तरह से भगवान ने अर्जुन को गीता का संदेश देकर हिप्पी से क्या बना दिया था, हैप्पी, उसी तरह से श्रीला प्रभुपाद 1965 में गए थे 70 साल की वृद्ध अवस्था में अमेरिका में, और वहां पे हजारों हजारों हिप्पी थे जो कि अपना घर बार छोड़
पूरा सिस्टम चेंज कर देना, नेक्स्ट टाइम करके सबको मार देता है, पूरा सिस्टम देखते हैं।
हाँ
बेसिक लोग कैसे कुछ हैं, यानी ये भी धारण कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो बोलेंगे ये जो भौतिक संसार एक मिथ्या है, धर्म सत्य जगत मिथ्या, केवल यहाँ पे सत्य है, सत्य सब झूठे हैं, यहाँ पे कुछ सच नहीं, किसी ढंग से मुझे बस धर्म में लीन होना है। ये भी एक पैसिविज्म है, ये भी एक निराशा बन है, क्योंकि अगर आप धर्म में लीन नहीं हो तो क्या कर ऑप्टिमिज्म इज आनंद। तो हमें इन सबको छोड़कर हरि भगवान गीता के छोटे ग्रहण करने वीक राग भय बोलता, राग अटैचमेंट भय डर क्रोध मिस फ्रस्ट्रेशन, इसको छोड़कर वीक राग भय बोलता मत मेरा माहू भाषण था, मेरे शरण भी रहा था, ब्रह्म को ज्ञान तत्सव मत भाव आगता, ब्रह्म को ज्ञान तत्सा बोलकर मत भाव मांगता। भगवान गारंटी दे रहे हैं कि उससे पहले ऐसे ब्रह्म बहुत से लोग आए हैं जिन्होंने मेरी शरण ग्रहण की है और पवित्र होकर उन्होंने मेरी ही प्रकृति को प्राप्त किया है। इससे अगर हम भगवान की शरण में जाएंगे तो हमें भगवान की प्रकृति में सच्चित आनंद, जो हम जो हमारा असली स्वरूप है, सच्चित और आनंद। सत का मतलब है एटर्नल, कभी समाप्त मांग। चित का मतलब क्या है, फुल ऑफ नॉलेज ज्ञान है। आनंद का मतलब क्या है, कि हमेशा आनंद में है। अगर हम भगवान की शरण में जाएंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो हम सच्चे आनंद अपने असली स्वरूप में जा सकते हैं। अगर हमें इच्छा करनी ही है, अगर हमें आशा करनी ही है तो हमें उस चीज के लिए आशा दिखानी चाहिए जिसका हमेशा अस्तित्व रहे, जो कि परमानेंट है, जो कि एटर्नल है। अगर हम एक शरीर और शरीर से संबंधित वस्तुओं पर आशा रखते हैं तो वो टेम्परेरी है, उससे आप क्या आशा कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि बोल प्रभु आपकी मुझे मदद चाहिए कल, बोल प्रभु बोले सॉरी मैं तो कल यहां हुई, तो मैं उनसे क्या आशा कर सकता हूं। उसी ढंग से हम अपने शरीर से क्या आशा कर सकते हैं, क्या हम गारंटी दे सकते हैं कल तक हम जीवित रहेंगे या अगले क्षण जीवित रहेंगे। लेकिन हम इसी शरीर में कितने कितने प्लान बना लेते हैं, अपने परिवार में कितने लंबे लंबे प्लान बना लिए हमने, क्या फायदा उन प्लान का, हम होंगे कामयाब कैसे, कामयाबी जब आप होंगे नहीं तो क्या कामयाब होंगे। आपके जो सारे के सारे प्लान हैं इस बॉडी से रिलेटेड है और बॉडी पे आपको विश्वास नहीं कर हो या ना हो तो क्या आप कामयाब होंगे, क्या सब ठीक हो जाएगा। तो आप होंगे तो हमें इस बात पर विश्वास करना चाहिए, इस बात पर आशा करनी चाहिए जो कि एटर्नल है, जो कि नित्य है, वो है आत्मा, हुआ हमारा असली स्वरूप। जब तक हम उस स्थिति में नहीं आएंगे हमारी सारी की सारी आशाएं बेकार है। हम सबको अगर ऑप्टिमिस्ट बनना है तो आध्यात्मिक जीवन में ऑप्टिमिस्ट बनना है कि हाँ ये मुझे मनुष्य शरीर मिल गया है, ये भगवान की बहुत बड़ा उपहार है मेरे लिए, बहुत बड़ा वरदान है, इसका मुझे अब सदुपयोग करना है, मुझे अपने समय को वेस्ट नहीं करना, मुझे अपने जीवन को लगाना है आध्यात्मिक जीवन की प्रगति में, सेल्फ रियलाइजेशन में। अगर मैं ये नहीं कर रहा हूं तो अपने जीवन बर्बाद कर रहा हूं, ये सारी की सारी आशाएं सारा का सारा ज्ञान बेकार है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि प्रैक्टिकल इसको कैसे किया जाए, जब भगवान की शरण में आने का अर्थ है तो आप प्रमुख।